आरवी की बातें सुनकर दिनकर जी और राधे दोनों की आंखों में नमी आ गई। सक्षम ने सबकी ओर देखा और मन ही मन बोला, वाह मेरे प्यार ने कमाल कर दिया। आरवी, तुम्हारी ये रियल इमोशनल एक्टिंग तो मेरा काम आसान कर गई। कमजोर पड़ रहे हैं। इतना कह सक्षम भी दादू कहते हुए दिनकर जी के नीचे बैठकर कैर पकड़ लेता है। हाँ, ले जाने दीजिए मुझे आरवी को यहाँ से। आपको तो पता है ना हमारी शादी होने वाली थी। पता नहीं क्यों किया है उसने हमारे साथ। आप मेरे भी दादू हो ना, हमें अलग मत कीजिए। तभी आरवी ने हाथ जोड़ते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर दिनकर जी की ओर देखा। उसकी आंखों में लबालब पानी भरा था। वो भरे गले से बोली, माना आप हमारे दादाजी नहीं हैं, पर दादाजी जैसे तो हैं ना। यहाँ अनजानों के बीच थोड़ा अपनापन दिया आपने, अपना माना ना मुझे। तो वही अपनापन देकर अपना हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए। आप भी चाहते हैं ना हम खुश रहें, मुस्कुराते रहें, चाहते हैं ना। ये सुनकर दिनकर जी की आंखें छलक आईं। उन्होंने फट से आंखों के किनारे साफ किए और बोले, उठो। सक्षम नीचे से उठ गया, पर आरवी वहीं बैठी रही। दिनकर जी ने उसे भी उठने को कहा तो आरवी ने ना में सिर हिलाया और बोली, हाथ तो रखिए सर पर। ये सुनकर दिनकर जी ने उसी वक्त आरवी के सिर पर हाथ रख दिया और आंखें मीच कर मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे हैं। दिनकर जी सक्षम की ओर देखते हुए बोले, उठाओ इसे और ले जाओ, और यहाँ ऐसी जगह लेकर जाना जहाँ से अंशु वापस न ला सके, वरना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसको यहाँ लेकर आना। पहले भी ये कोशिश कर चुकी है, वो ले आया था इसे। सक्षम ने आरवी को नीचे से खड़ा किया और बोला, एक बार हुआ इसका ये मतलब तो नहीं बार बार हो, चलो आरवी। तभी राधे बोला, पर मालिक, अयांश बाबा। दिनकर जी बोले, मैं उसे देख लूंगा, जाओ तुम दोनों। आरवी और सक्षम ने हाँ में सिर हिलाया। तभी आरवी बोली, राधे भैया आप अपना और इनका ख्याल रखना, और आप दवाई वक्त पर लिया कीजिए। और हाँ राधे भैया, करेला मैन को ज्यादा करेला मत खिलाइएगा, नहीं तो सारी कड़वाहट वो आप पर ही निकालेगा। और हाँ, इतना डरा मत कीजिए उनसे, बोलना भी सिखाइए। जब तक बोलेंगे नहीं, उनको ऐसा ही लगता रहेगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। गुस्सा करना, रौब दिखाना, ये सब तो उनको बहुत आता है। एंड सॉरी, आप दोनों भी हमारी वजह से परेशान हुए हैं, पर हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। हल्का सा मुस्कुराते हुए तभी सक्षम बोला, जल्दी चलो आरवी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। दिनकर जी बोले, रुको। दोनों ने उनकी ओर देखा तो दिनकर जी राधे से बोले, जाकर गार्ड को मेरे पास बुला कर लाओ, सामने से जाते देखेंगे तो अंशु को खबर जल्दी मिल जाएगी, जितनी देर से पता लगे उसे बेहतर है। इनको दूर निकलने को भी वक्त चाहिए ना। दोनों की ओर देखते हुए राधे बोला, मालिक ये करने से पहले एक बार सोच लीजिए ना। दिनकर जी आंखें दिखाते हुए बोले, सुना नहीं, जितना कहा है उतना करो। राधे जी कहकर बाहर की ओर चला गया और दिनकर जी दोनों से बोले, उधर छुप जाओ। सक्षम ने हाँ कहा और आरवी को लेकर साइड में छुप गया। तभी राधे गार्ड को बुला लाया। गार्ड आते ही बोला, जी मालिक, आओ मेरे साथ। दिनकर जी अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए बोले। गार्ड उनके साथ चल दिया। दिनकर जी ने राधे से भी कहा, तुम भी आओ राधे। जी मालिक, कहते हुए पीछे देखते हुए राधे भी उनके साथ चला गया और जाते जाते खुद से बोला, पता नहीं मालिक ने सही किया है या नहीं, अब पता नहीं क्या करेंगे अयांश बाबा। आरवी डाइनिंग टेबल की ओर देख रही थी जहाँ वो राधे और दिनकर जी से बातें करती थी। उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। तभी सक्षम बोला, चलो रास्ता साफ है। हाँ, आरवी खुश होते हुए बोली और सक्षम के साथ बाहर की ओर भागकर जाने लगी। दोनों चौखट पर पहुंचे कि सक्षम का ध्यान आरवी के गले की तरफ गया। वो रुकते हुए बोला, ये क्या है? आरवी रुकते हुए बोली, वो मंगलसूत्र। आरवी ने इतना ही कहा था कि तभी सक्षम ने आरवी के गले से उसे खींचकर निकाल दिया। आह, आरवी गले पर हाथ रखकर चिल्लाई। सक्षम उस मंगलसूत्र को वहीं फेंक कर बोला, इसका कोई मतलब नहीं। आरवी गला मसलते हुए बोली, सक्षम लगा मुझे ऐसे निकालते हैं क्या? सक्षम आरवी के गले पर फूंकते हुए बोला, ओ नो, सो सॉरी जान, रियली सॉरी, वो गलती से हो गया, जबरदस्ती डाल रखा था अयांश ने गले में, सॉरी, मैं यहाँ से जाते ही दवा लगा दूंगा, ठीक है? आरवी सक्षम की ओर देखते हुए बोली, इट्स ओके, अब चलो। कह सक्षम आरवी को बाहर ले गया। दोनों ने गेट खोला और दोनों उसी लॉन्ड्री वाले की बाइक पर वहां से निकल गए। थोड़ी देर में गार्ड बाहर आया। ये मालिक भी ना, बोले कमरे में चूहा है, कहाँ था? भ्रम हुआ था मालिक को, अरे ये गेट किसने खोला? थोड़ा हैरानी से, ओ हाँ, उस लॉन्ड्री वाले ने ही खोला होगा, बाइक भी नहीं उसकी, मैं नहीं था तो खुद ही खोलकर चला गया। दिनकर जी कमरे से आकर हॉल में बैठ गए तो राधे उनके पास आकर बोला, जब आपको लगता है कि आपने सही किया उनको यहाँ से जाने देकर, उनकी खुशी उनको दे दी, फिर परेशान क्यों हैं आप मालिक? परेशान नहीं राधे, उदास हूँ। मौत तो हो ही जाता है ना अगर कोई कुछ पल भी आए तो, और ये बच्ची तो कुछ दिनों से यहाँ रही है, नटखट भी थी और प्यारी थी, तुम कह रहे थे ना वो आज उदास है, देखो जाते जाते हमें भी उदास कर गई। दिनकर जी भावुक होते हुए बोले। राधे ऊपर की ओर देखते हुए बोला, वैसे तो कमरे में रहती थी, कभी कभी ही दूसरी जगह आती जाती, पर रौनक तो थी मालिक घर में, कभी अयांश बाबा से उलझती तो कभी कुछ अटपटी बातें करती, अब तो उस कमरे में जाने का भी मन नहीं रहा, खुद ब खुद कदम तीनों कमरों में जाने लगे थे मेरे,
अब फिर तो कमरों में सिमट कर रह जाएंगे। याद तो हमें भी आएगी, भैया जो कहकर बुलाती थी बड़ा अच्छा लगता था। नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहते हुए दिनकर जी ने हाँ में सिर हिलाया और अयांश आएगा तब क्या कहेंगे ये बैठकर सोचने लगे। राधे खगा बस उनकी ओर देखे जा रहा था। उसी शाम अयांश ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठा ही था कि तभी विनित भी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। अयांश उसकी ओर देखते हुए बोला, व्हाट? क्या व्हाट? और तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे जा रहे हो? विनित ने अयांश से सवाल किया। अयांश सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, तुम सबकी कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा घर, मेरा ऑफिस, मुझे इनको लेकर सवाल जवाब क्यों करते हो? कभी आऊं कभी जाऊं, इट्स माय चॉइस। वो इसलिए, ये चॉइस पहले दिखी नहीं ना। सवेरे जल्दी आने वाला, देर रात घर जाने वाला अयांश मेहरा आजकल दोपहर और शाम ढलते ही घर लौटने लगा है। कोई खास वजह? कहीं शादी का असर तो नहीं? विनित मुस्कुराते हुए बोला। तभी अयांश ने उसकी कॉलर पकड़ ली। जस्ट शट अप, आज सुबह की हरकत पर बख्श दिया, क्योंकि आज तुमने काम अच्छा किया और तेरे लिए खुशी का दिन है। बड़ी डील जो साइन की है ना, तो अगर इस खुशी के दिन पर मातम नहीं मनाना तो जुबान बंद रख, समझा? विनित को झटका कर छोड़ते हुए विनित थूक निगलते हुए बोला, ओके, ऐसे चढ़ क्यों रहा है ऊपर? जानता हूँ आज शबाशी का काम किया है मैंने, अच्छी प्रेजेंटेशन दी तभी छोड़ा दिया, वरना सुबह वाले मेरे कांड पर अब तक खुदा को प्यारा हो जाता मैं। अयांश उसे घूरते हुए बोला, फिर बकवास की तुमने, चुप तो रहा ही नहीं जाता ना? विनित नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं रह सकता, पता नहीं तू कैसे जुबान पर ताले रख लेता है। और सच ही तो कहा, क्या गलत बोला? बता गया है क्या? कितने साल महीने हो गए टाइम से घर, अभी देखा है तो पूछ ली वजह? वजह जाननी है तो सुन, सिर्फ दादू के लिए। पहले उन्होंने नहीं कहा, पर अभी पता चला कि वो बहुत मिस करते हैं, मैं पास बैठूं उनके रहूं, वो चाहते हैं और वो कितने खास और जरूरी है मेरे लिए ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है, तू जानता है, तो बस उन्हीं के लिए जाने लगा हूं। कल गया क्योंकि उनके साथ खाना खाना था जो उस चमेली ने खराब कर दिया, अयांश गर्दन झटकाते हुए बोला।
चमेली? सुन विनित हंस पड़ा, पर उसने अपनी हंसी रोक ली तो अयांश फिर बोला, उस तेल की वजह से दादू के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, उसी से परेशान होकर रह गया, इरिटेट करके रख दिया था। आई होप आज कुछ ना करे। और हाँ, अब जा रहा हूँ क्योंकि अभी ऑफिस में कोई काम नहीं था, सोचा दादू के साथ शाम को गार्डन में बैठ जाऊँगा, उनको अच्छा लगेगा। और साथ में सुबह आया था तो डील का कहकर आया था, अब जाकर सामने से बता दूंगा कि डील फाइनल हो गई। ओह, तो ये वजह है? वैसे अच्छी वजह है, चल मैं भी चलता हूँ फिर साथ घर, यहाँ तरुण जी देख लेंगे, मेरा भी सबसे मिलना हो जाएगा, विनित सीट बेल्ट लगाते हुए बोला। सबसे मिलना? अयांश ने उसकी ओर देख कर कहा। हाँ सबसे, दादू से, उनका आशीर्वाद भी ले लूँगा, कुछ दिनों से मिला नहीं ना, और आज तो आशीर्वाद बनता है, खुशी का दिन है, उनका हाथ सर पर रहे, हम यूं ही बड़ी बड़ी डील साइन करते रहें, और राधे से, उससे भी मिल लूँगा, याद कर रहा होगा हमारी, जमती बहुत है ना, कुछ दिनों से चाय नहीं पी उसके हाथ की, तो वो भी नसीब हो जाएगी, और जो भी है, पर नौकर जाकर जो भी इंसान प्राणी सबसे हेलो हाय कर लूँगा, लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए वरना भूल जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कोई मुझे भूले, विनित मुस्कुराते हुए बोला। जितना होशियार खुद को समझता है ना, उतना है नहीं, दादू राधे सब समझ आ रहा है, अच्छी बात है समझ आ रहा है तो, और मुझे सच में दादू राधे से मिलना है। हाँ हाँ चल मिल ले उनको भी, हिचकियाँ आती हैं तेरे नाम की, राधे तो तेरे इंतजार में पलके बिछाए बैठा है, अयांश बोला। रियली? विनित चहकते हुए बोला। जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर फिर, अयांश ने नामे सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर विनित को लेकर वहां से घर के लिए निकल गया। तभी विनित खुश होते हुए मन ही मन बोला, चमेली ज्यादा तो बताना नहीं ये अपनी कहानी के बारे में, जा रहा हूँ तो आरवी भाभी से भी मिल लूंगा और छोटे मोटे किस्से सामने से सुनने देखने को भी मिल जाएंगे। तभी अयांश ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया तो विनित बोला, तू गाने सुनेगा? तेरी बकवास सुनने से अच्छा है गाने सुन लो, कह अयांश ने गाने की वॉल्यूम बढ़ा दी। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। गाने के बोल सुनते ही विनित बोला, वाह क्या गाना है, सावन तो नहीं है अब पर मन जरूर सुलग रहा है, रिमझिम ना हो भले पर किसी का प्यार बरस जाए तो ठंडक मिल जाए। नहीं, ये सुनते ही अयांश ने विनित की ओर घूरा तो विनित चुप होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। अयांश की गाड़ी देखते ही गार्ड ने भागकर गेट खोला, अयांश गाड़ी अंदर ले लेता है। विनित गाड़ी से उतरते हुए बोला, आ गई हमारी मंजिल, और अयांश के साथ अंदर बढ़ गया। दादू को मैं बताऊंगा डील वाली बात। ओके, विनित ने अयांश से कहा। ठीक है बता देना, अयांश बिना उसकी तरफ देखे बोला। वैसे इस खुशी की पार्टी तो बनती है ना, अयांश के साथ चलते चलते विनित बोला। तुझे करनी है तो कर लेना, अयांश ने उसी पल कह दिया। हाँ करनी है पर बाहर नहीं घर पर, यहाँ रामू काका भी आ जाएंगे, बाकी सब तो है ही यहाँ, और सुन पार्टी में आरवी भाभी दी रहेगी। विनित की ये कहते ही अयांश के कदम रुक गए, उसने विनित की ओर देखा तो विनित कंधे पर हाथ रख बोला, प्लीज वो यहीं रहती है ना अब, तुमने शादी की है हमारी खुशी में शामिल कर लेंगे उसको भी, प्लीज रहने देगा ना आरवी को पार्टी में शामिल, प्लीज मैं यहीं पार्टी करूंगा,
एंजॉय करेंगे दादू, राधे, मैं, तुम और वो। इसी जगह होकर अलग रहे यार अच्छा नहीं लगता। हाँ बोल देना। अयांश विनित का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, अपना भाषण बंद कर, इतना ही मन है उसको शामिल करने का तो कर लेना। वैसे भी चटोरी है एक नंबर की, कुछ खाने को अच्छा उसे भी मिल जाएगा। मेरे घर का घास फूस उसके गले से मुश्किल से उतरता है। बड़बड़ाते हुए विनित को सब सुन जाता है। वो हंसते हुए बोला, क्या कहा? घास फूस और वो चटोरी है या चमेली? लगता है अयांश मेहरा द ग्रेट बिजनेसमैन आजकल खूब नामकरण करने लगा है। चटोरी, चमेली, वाह, नया काम शुरू किया है क्या? ये सुनते ही अयांश की भौहें से कुड़ गईं। वो विनित की तरफ झपटता, उससे पहले ही विनित पीछे होकर वहां से भाग गया। अयांश ने नामे सिर हिलाया और अंदर बढ़ते हुए बोला, इसकी वो भाभी कम थी क्या जो अब एक ही छत के नीचे इसका देवर भी आ गया? दोनों इरिटेट करते हैं, सर दर्द है दोनों के दोनों। जितना इनसे दूर रहो चैन मिलता है, वरना जीना मुश्किल कर दे। मुंह से फूंकते हुए अयांश ने ये कहते हुए घर के अंदर कदम रखा ही था कि तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आ जाता है। अयांश ने पैर हटाकर देखा तो वही मंगलसूत्र था जो जाते जाते सक्षम आरवी के गले से निकालकर वहां फेंक गया था। अयांश ने मंगलसूत्र उठाया और उसे मुट्ठी में भींचते हुए बोला, तुमने फिर इसे अपने गले से निकालकर फेंक दिया? फिर तुमने ये जरूरत की मेरी ना मानने की? ये ठीक नहीं किया तुमने। मैं चाहता हूँ तुमसे दूर रहो, पर लगता है तुम्हें जब तक मेरे हाथों तकलीफ ना हो, दर्द ना मिले, तब तक सुकून नहीं। मुझे अपने पास आने पर मजबूर कर ही देती हो तुम। बी रेडी, आई एम कमिंग। गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी हथेली सामने करके अयांश बोला और फिर उसी मंगलसूत्र को मुट्ठी में भींचते हुए तेजी से चलता हुआ सीधा ऊपर की ओर बढ़ गया। क्रमशः